The sun is descending into the horizon. From here, we're going to try to go to two places, but depending how dark it gets, we may only go to one place. So we may have a choice. I will let you decide. Shall we go to Uddhav Kyari, where Uddhav met Sri Radharani and Gopis with the message of Krishna? Or should we go to Yavat, the residence where Sri Radharani lived with Jatila Katila and Abhimanyu? Uddhav Kyari. Yavat. Which was more? We'll try to do both. But that means we can only spend a few minutes each place. We are now at Brindakund, one of the most holy places of Sri Brajbhumi. This is the headquarters of Brindadevi, who is the goddess expansion, directly expansion of Srimati Radharani. And she oversees the arrangements of the whole of Brajbhumi to make a pleasing environment for Sri Radha and Krishna to meet and to enjoy divine pastimes together. She has hundreds, thousands of parrots that are her messengers, that are constantly sending messages back and forth. By her arrangements, in each season, the flowers blossom in a certain way, the breeze, the temperature. Everything is being coordinated by Brindadevi for the purpose of creating the most sublime, pleasing environment for the Leela of Sri Radha Govinda. The expansion of Brindadevi is Tulsi. Brindavan means the forest of Brinda, the forest of Brindadevi. She is the goddess of Brindavan, but by her own love, she has personally handed over the supreme position of the queen of Brindavan to Srimati Radharani. This kund is one of the places where Sri Sri Radha Krishna meet each day in their eternal Astakaliya Leela, just in the outskirts of Nandagaon. One very great saint, Madhavadas Babaji Maharaj, was worshipping a deity of Brindadevi here in this place for many, many, many years. And before leaving his life in this material world, he gave the property to Srila Prabhupada's mission because he had such great faith in the sincerity and the purpose of ISKCON and the devotees. One of the most treasured sacred places, one of the most intimate places of all Brajbhumi. And he handed over to Srila Prabhupada's mission. That was his faith in our Guru Maharaj and in the integrity of his purpose. The last time we came here, there was just a very small little temple there. But we see, since last year even, Daivi Shakti Mataji, Dinabandhu Prabhu, and ISKCON devotees from all over the world have contributed to build this beautiful hand-carved sandstone temple for Sri Brindadevi. The deity, it's a beautiful deity. Brindadevi, original deity, the deity was broken, but the new deity that was made is at the MVT, in Daivi Shakti's room and will be installed in this temple in February with Sri Krishna's grace. Today we have the good fortune of the presence of Bhagavat Prasad Prabhu. He is a disciple of Madhavadas Babaji, has been serving here at Vrindakund for the past 19 years, and he will, with his realization comes through service. We can get theoretical knowledge by reading scriptures, but actual realization comes from sacrifice and service. He has been serving Sri Brinda Devi here at Vrindakund for about 20 years, faithfully. Very humble soul. We request him to speak about the great significance of this place at this time. Would you like to speak English or Hindi? Hindi.
Yeah.
So whoever speaks Hindi, look for someone with light complexion and translate for them in their ear as he is speaking. Does all westernized Vaishnavas have a translator with them? Is anyone without a translator? You will translate for them? Haribo, you will translate?
Hare Krishna. Boliye Shri Vrindadevi Maharani ki. Vrindadevi Maharani ki. Yahan jo aap log baithe hue hain, Srimati Vrindadevi ka original sthan hai. Vrinda kin ka naam hai, wo aath naam aap likh lijiye jo likhna cha rahe hain. Vrinda, Vrindavani, Vishwapujita, Vishwapavani, Pushpasara, Nandini, Tulasi, Krishna Jeevani. Ye 8 name for Vrinda Devi name. Ye Vrinda ji ka original sthan hai. Brahma Vaivart Puran mein spasht likha hai, aap log padh ke dekh sakte hain ki Nandgaon se paschim disha mein Shri Vrinda Devi ka ghar hai. पूरे 84 कोश जो ब्रजमंडल है आज जो वृंदावन जो कहलाता है वो ठाकुर जी के समय में तुलसी का वन था जिसको आज वृंदावन बोलते हैं लेकिन वृंदा जी का घर यही है जहां आप लोग बैठे हुए हैं यही राजो वृंदा देवी का स्थान है ये ग्रंथ में वर्णन है मैं नहीं बोल रहा हूं ग्रंथ बोल रहा है तो यहां श्रीमती वृंदा देवी परमानेंट विश्राम करती है, रहती हैं जैसे नंद भवन में कृष्ण बलराम दोनों भैया हमारे नंद महाराज यशोदा माँ उनके मित्र और हमारी श्रीमती राधा रानी उधर विराजती हैं पूरा परिवार सह दर्शन आप लोगों ने किया होगा आज तो वृंदा देवी यहाँ विराजती हैं कृष्ण उधर विराजते हैं नंदगांव में यहीं से पूरे 84 कोस का जो लीला होता है कौन सा अष्टकालीन लीला 24 आवर्स में जो लीला होता है आज भी हमारे ब्रजधाम में प्रत्यक्ष रूप से राधा कृष्ण मिलन का 8 स्थानों में लीला होता है आज आज भी ये निश्चित है तो उसमें से 8 स्थानों में जो स्थान है वो सबसे पहले नंदगांव का नंदीश्वर योगपीठ है नंदीश्वर योगपीठ क्यों है कि जो आप हिल देख रहे हैं पर्वत ये साक्षात हमारे शिव स्वरूप है आपका गोवर्धन जो हिल है वो तो साक्षात विष्णु स्वरूप और बरसाने का जो पर्वत है ब्रह्मा स्वरूप ये जो पर्वत है ये साक्षात नंदीश्वर महादेव जी का स्वरूप है तीनों पर्वत तीनों देवता पर्वत के रूप में यहाँ विराजमान है तो ये नंदीश्वर योगपीठ के नाम से योग माने मिलन पीठ माने स्थान राधा कृष्ण का जो प्रथम मिलन होता है वो यहीं हमारा जो पीछे गुप्त कुंड है जिसको गुप्त कुंड बोलते हैं ये तो वृंदा कुंड है पीछे गुप्त कुंड है गुप्त माने सीक्रेट राधा कृष्ण का जो मिलन हुआ है सीक्रेट वो यहीं गुप्त कुंड में हुआ है उसका लीला मैं 5 मिनट में आपको बता देता हूँ महाराज जी का आदेश ऐसा है 5 मिनट आप लीजिए तो श्रीमती राधा रानी 6 महीने रहती हैं आपके बरसाने में और 6 महीने जावट में जहाँ आप जाना चाह रहे हैं समझ रहे हैं ना कुछ लोग तो समझ रहे होंगे हिंदी तो राधा रानी सुबह भोग बनाने के लिए कृष्ण के लिए आती हैं नंद भवन में, वो सुबह 6 बजे प्रातः काल की लीला है। वो क्यों आती हैं ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक समय हमारे दुर्वासा मुनि राधा रानी के स्वरूप 5 वर्ष की जो लाली का स्वरूप है उसका दर्शन करने के लिए आए हैं बरसाना में, क्योंकि हजारों साल तक तपस्या किए हैं लेकिन ध्यान में तो आते हैं लेकिन साक्षात दर्शन नहीं हो रहा राधा रानी का। तो उनका उधर अवतरित हुई है राधा रानी, तो उनका क्यों नहीं चल के हम दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे नंद लाला के दर्शन के लिए तो ब्रह्मा इंद्र कुबेर शिव इत्यादि सभी तो आए हैं। अच्छा, तो राधा रानी का दर्शन के लिए दुर्वासा मुनि आते हैं बरसाना में, वहाँ राधा रानी 5 साल का जो स्वरूप है और अपने मित्रों के साथ सखियों के साथ में जो खेल खेलती हैं, वो कौन सा खेल की जो कीर्तिदा माँ रोजाना ठाकुर को रसोई बना के भोग लगाती हैं, तो वो जो माता पिता जो करते हैं वही बच्चे भी सीखते हैं। तो राधा रानी स्वयं अपनी सखी मित्रों के साथ में रसोई बना रही हैं और रसोई आटे का नहीं केवल ये रज का और फायर कर रही हैं। और रसोई बनाने के बाद जब दुर्वासा मुनि बहुत दूर बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के बीच में जब आप आएंगे ना तो खेल बंद हो जाता है, कोई बड़ा आदमी जब आता है तो इसलिए दुर्वासा मुनि थोड़ा दूर बैठ गए कि लीला का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात दर्शन कभी नहीं हुआ, ऐसा कहाँ दर्शन मिलेगा बाल स्वरूप का। तो जब राधा रानी ने रसोई बना दिया, ठाकुर को ऑफरिंग किया, भोग हो गया, भोग के बाद अतिथि देवो भव, आप सब लोग हमारे आए हमारे अतिथि हैं, तो हमारे पास जो भी वाणी है जल है ये रज है बैठने के लिए तो हमने आपको दिया, तो अतिथि देवो भव। तो अतिथि जब आता है तो सबसे पहले उसके लिए कुछ प्रसाद हो जो भी हो तो देना है। तो राधा रानी अपने श्री हाथ से बाबा के लिए, वो बाबा 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 तोतली बोली में इतना सुंदर भाव है, तो बाबा के लिए वो साक्षात जो प्रसाद जो भोग लगाए हैं राधा रानी, वो बाबा के लिए प्रसाद जो लेके जाती हैं राधा रानी, तो वो प्रसाद क्या था, वो तो अमृत से भी कितना गुना अमृत है। जब दुर्वासा मुनि वो प्रसाद पाते हैं तो इतना आनंद आता है, बस हृदय तो गदगद हो गया और पुलकावली आ गई शरीर में और कंठ रुक गए, कुछ बोल नहीं सकते हैं दुर्वासा मुनि, लेकिन आशीर्वाद दे रहे हैं राधा रानी को, अश्रुपात हो रहा है, इतना झरझर झरझर इतना आनंद आया कि जीवन में कभी हजारों साल से आनंद नहीं आया। साक्षात राधा रानी के हाथ से जो प्रसाद मिल रहा है, जो राधा रानी जो प्रसाद दे रही श्री अपने हाथ से, ऐसा आनंद कब मिलेगा। तो इतना आनंद आया, दुर्वासा मुनि तो बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं, 5 साल की है ना लाली है, तो बेटी उच्चारण किया, बेटी बेटी जो इतना सुंदर जो आज तुमने ये प्रसाद मुझे खिलाया, इसको जो भी जीव खाएगा वो दीर्घायु होगा, लॉन्ग लास्ट, दीर्घायु चिरंजीवी। ये आशीर्वाद राधा रानी को किसने दिया, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ये आशीर्वाद देके अपना प्रस्थान किया। इसके बाद पूरा मैसेज फैल गया ब्रज में कि दुर्वासा मुनि आए और राधा रानी को आनंद आ रहा है कुछ, जय राधे। तो मैसेज मिल गया माँ यशोदा के कान में भी कि दुर्वासा मुनि ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया राधा रानी को। तो उनके कान में जो ही ये बात आई तो कुंदलता गोपी को बुलाती हैं माँ यशोदा। कुंदलता गोपी कृष्ण की भाभी हैं, मैं ब्रजभाषा बोल रहा हूँ बहन, समझ लेना थोड़ा थोड़ा। तो कृष्ण की भाभी लगती हैं ये, नंद उपनंद धरानंद सत्तानंद इत्यादि 9 जो भाई थे नंद महाराज, तो उनमें से एक के लड़के की बहू थी कुंदलता गोपी, वो बाकुचात्री में अनुनय विनय सबको प्रसन्न करने में बड़ी चतुर थी, इसलिए माँ यशोदा उनको बुलाती हैं कि बेटी जाओ कीर्तिदा माँ को प्रार्थना करना कि अपनी बेटी राधा को मेरे यहाँ भेज दें। वो क्यों, कि रसोई बनाएगी मेरे लाला के लिए, क्योंकि वो तो हमेशा ये चाहती थी मेरा बेटा किसी प्रकार सुरक्षित रहे, अघासुर बकासुर इत्यादि कितने आए, उधर 6 महीने रहे गोकुल में हमारे नंद महाराज, लेकिन ये पूतना तृणावृत इत्यादि कितने ही राक्षस जो आए तो उनको घबरा गए कि भाई क्या करें, हमारे बच्चे किसी दिन तो कुछ हो जाएगा तो क्या करना चाहिए। तो मीटिंग हुआ बैठ करके, वो जल्दी बोल रहा हूँ मैं, तो मीटिंग होता है कि भाई हमको क्या करना चाहिए। आनंद आ रहा महाराज, नहीं नहीं, तो मीटिंग हुआ कि भाई हमको कहाँ चलना चाहिए। तो बैठ कर के मीटिंग हुआ, तो जो नंद उपनंद जो सबसे ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध थे, उन्होंने कहा कि भाई नंदीश्वर एक पर्वत है, वहाँ हमको चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ सांडिल मुनि का श्राप है, कोई भी राक्षस उस पहाड़ी पर जाएगा तो पाषाण हो जाएगा पत्थर। तो इसलिए नंद महाराज ने यहाँ करके अपना महल बनाया यही पहाड़ी पर, तो यहाँ कोई राक्षस नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ रहते हैं। तो जब राधा रानी वहाँ से आती हैं कुंदलता गोपी के साथ रथ में नंद भवन में, और सुबह प्रातः काल में ठाकुर के लिए रसोई बनाती हैं हमारे कृष्ण के लिए, और कृष्ण वो भोग लगाते हैं। इसके बाद 7 बजे के बाद राधा रानी सेपरेट रूम में, कृष्ण अपना अलग से है। लेकिन दो चीज़ हैं इसमें, प्रत्यक्ष लीला और अप्रत्यक्ष लीला। वो प्रत्यक्ष लीला तो ये है कि राधा रानी आती हैं और रसोई बनाती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष लीला ये है कि राधा बिन कृष्ण और कृष्ण बिन राधा रह नहीं सकते, एक प्राण दो देही है ना, जय राधे, एक प्राण दो देही है। तो ये लीला था कि कृष्ण बिन राधा, राधा बिन कृष्ण कैसे रहेंगे, तो मिलन तो होना चाहिए, लेकिन मिलन होगा कहाँ और कैसे होगा। तो ये हमारे कृष्ण तो बड़े चंचल हैं, कुंदलता गोपी को बुलाते हैं कि माँ यशोदा ने तो राधा रानी को अलग रूम में भेज दिया, अभी मेरा मिलना कैसे होगा। तो कुंदलता गोपी भाभी को बुलाते हैं कि भाभी, और बोले कुछ नहीं, एकदम चुप से और केवल नेत्रों का इशारा कर दिया, नेत्रों का इशारा इंगित किया कि राधा रानी को गुप्त कुंड वृंदा कुंड में ले चलो। तो राधा रानी को कुंदलता गोपी ले आती हैं यहीं गुप्त कुंड, जो पीछे आप दर्शन करेंगे। तो यहाँ राधा रानी कुंदलता, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंगविद्या, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा, ये अष्ट प्रिंसिपल गोपी, जो मुख्य गोपियाँ हैं जो हमेशा राधा कृष्ण की सेवा में रहती हैं, और पूर्णमासी देवी योगमाया, जिनका आश्रय लेकर कृष्ण लीला करते हैं। वैसे हमारे नंद महाराज की पुरोहित हैं, वो पुरोहित आप जानते होंगे, पुरोहितानी, पूर्णमासी पुरोहितानी। तो यहाँ करके ललिता दशसखी, राधा कृष्ण, कुंदलता गोपी, पूर्णमासी देवी योगमाया, मंजरी और उपमंजरी, सहस्त्र सहस्त्र गोपियाँ, थाउजेंड थाउजेंड गोपियाँ, यहाँ करके सहस्त्र दल कमल बनता है। तो उसमें बीच में राधा कृष्ण, ललिता आदि अष्टसखी, मंजरी, उपमंजरी, सहस्त्र सहस्त्र गोपियों का हर एक पंखुड़ी में जो स्थान है, वहाँ सब गोपी को श्रीमती वृंदा देवी पोशाक देती हैं, ड्रेस, और हर गोपी की सेवा है यही योगपीठ में। मंजरी का अलग है, उपमंजरी का अलग है, अष्ट सखियों का अलग है, और वृंदा देवी इतना सुंदर कुंज बनाती हैं, कोई ईंट पत्थर का नहीं, पुष्पों का कुंज, वो गुप्त कुंड में बनता है, पुष्पों का कुंज, जिससे कृष्ण का नाम कुंज बिहारी हुआ, वही कुंज बनता है, फर्स्ट यहीं का बनता है, जो योगपीठ बनता है यहीं, जो गुप्त कुंड में ये कुंज बनता है आप जो देखेंगे। तो यहाँ से 8:24 तक ये लीला होता प्रतिदिन, आज भी, ये कोई साधारण लीला नहीं बोल रहा हूँ मैं, आज भी ये लीला प्रत्यक्ष रूप से होता है। आप ये जो देख रहे हैं ये नहीं, वो जो है वृंदा कुंड का वर्णन, उसको मैं क्या कोई भी वर्णन करने में सक्षम नहीं है, इतना सुंदर योगपीठ का जो वर्णन है, वहीं गुप्त कुंड में जो वर्णन हो लीला होता है। इसके बाद 8:24 पे कृष्ण तो अपने सखाओं के साथ गौचारण के लिए चले जाते हैं, और राधा रानी अपनी सखियों के साथ इधर संकेत वट में, फिर मध्यान्ह 12 बजे सूर्य पूजा के बाद उधर लीला होता है राधा कुंड में, मध्यान्ह काल में 12 बजे, और प्रथम योगपीठ यहाँ होता है। ये तो योगपीठ का लीला, और ये श्रीमती वृंदा देवी यहाँ परमानेंट रहती हैं, पूरे 84 कोस का तो ये मैनेजर है, जो भी लीला जहाँ भी होगी ये पूरा यहीं से मीटिंग होगा, ये पार्लियामेंट पूरे ब्रज का, हाँ यहीं से स्टार्ट होकर पूरा पूर्णमासी देवी और वृंदा देवी यहीं से मीटिंग करके पूरे ब्रज मंडल का जो संचालन करती हैं लीला का। 1,00,000 शिष्य हैं श्री वृंदा जी के, तोता, जिनमें सबसे मुख्य है दक्ष, जो हमेशा वृंदा जी के हस्त कमल में विराजमान रहते हैं। ये सूक्ष्म लीला छोटा सा मैंने आपको बता दिया, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
Danyava. Let us show our gratitude to Bhagavat Prasad from.